गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी की लिखी कहानी बहुरी अकेला। स्टाफ रूम में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। मुझे देखकर क्षण भर को सन्नाटा खिंच गया। मुझे लगा कि कहीं बहस का मुद्दा मैं ही तो नहीं। तभी मिसेस झा ने कहा, लो ये आ गई मिसेस मार्टी, इन्हें भेज दो, बहुत काबिल आइटम है, कैसी भी सिचुएशन हो ब्रेवली हैंडल करती हैं। मिसेस सक्सेना मुंह बनाकर बोली, वे दिन गए मिसेस झा, अब तो ये मिस प्रिविलेज्ड हैं, इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों हो रही है, मैंने आखिर पूछ ही लिया। अरे हम गरीब क्या कृपा दृष्टि करेंगे, कृपा दृष्टि तो आप पर मैम की है, इसीलिए तो आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, खासकर संडेज को, मिसेस सक्सेना कुटिलता से आंखें नचाकर बोली। कुछ पता भी तो चले कि माजरा क्या है, मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा। उत्तर में सबने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। बड़ी देर बाद जब मेरी समझ में आया, उसका सार यह था कि शुक्रवार को एमए फाइनल की लड़कियां अजंता एलोरा जा रही हैं, पर इंचार्ज मिसेस गुप्ता के श्वशुर की अचानक डेथ हो गई। अब सवाल यह है कि उनके स्थान पर किसे भेजा जाए। सबकी अपनी परिस्थितियां थीं। मिसेस सक्सेना की बिटिया वायरल में पड़ी थी। रविवार को किरण के देवर की सगाई थी। मिसेस कृपाल की सास पैर में प्लास्टर बंधवा कर पड़ी थी और खंडेलवाल के पूरे दिन चल रहे थे। दासगुप्ता के दोनों बच्चों के सोमवार से टर्मिनल्स शुरू हो रहे थे और बिसारिया वो तो पहले ही छुट्टी पर थी। स्टाफ में दो तीन अति बुजुर्ग सदस्य थीं जिन्हें इस मिशन पर भेजना बेकार था। एकाएक मुझे याद आया, विभा वो तो जा रही है ना, या उससे भी कोई प्रॉब्लम है। विभा तो जा रही है, पर वो तो खुद ही बच्ची है, लड़कियों को क्या संभालेगी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी साथ होना चाहिए। और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैडम की चहेती जो हो उनकी सख्त हिदायत है कि अंजू शर्मा को छुट्टी के दिन कोई काम ना सौंपा जाए। देर से शादी करने का यही तो फायदा है, सबकी सिंपैथी मिल जाती है। मैं चकित सी देखती रह गई। ये सबकी सब मेरी कुलीग्स थी, सालों से हम साथ काम कर रहे थे, हमेशा कैसी शहद घुली बातें करती हैं। आज पता चला कि सबके मन में कितना जहर भरा हुआ है। उन सबके पास व्यस्तताओं की एक लंबी लिस्ट थी। एक मैं ही फालतू नजर आ रही थी, पर उनके शब्दों में प्रिविलेज्ड थी, इसलिए सबकी जबान पर जैसे कांटे उगाए थे। भला हो मिसेस देशपांडे का, मेरा पक्ष लेते हुए बोली, अभी तक तो यही बेचारी सारा बेगार्ड हो रही थी, अब इसके साथ मैडम थोड़ी सिंपैथेटिक हो गई हैं तो तुम लोगों को जलन क्यों हो रही है। अरे ये तो सोचो कि इतनी देर से उसने शादी की है, पति भी साथ नहीं रहते, एक छुट्टी के दिन ही मेल मुलाकात हो पाती है, वो भी तुम लोगों से देखी नहीं जाती। उनकी बुजुर्गियत का ख्याल करके सब चुप हो गई, पर सबके चेहरे पर भाव था कि इतनी देर से शादी की है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगतें। और मिसेस सक्सेना से तो आखिर रहा नहीं गया, बोली, अब साल भर तो हो गया इनको, इतना तो कोई नई नवेली बहू को भी नहीं सहेजता। मेरा तो जैसे खून खौल गया। आप लोग यही चाहती हैं ना कि इस बार लड़कियों को लेकर मैं जाऊं, तो चली जाऊंगी, उसके लिए इतने ताने उलहनों की क्या जरूरत है। और मिस्टर हबी, उनका क्या होगा, उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है, दैट्स माई प्रॉब्लम। उसी तैश में मैं मैडम के कमरे में चली गई और कह दिया कि मिसेस गुप्ता के ना आने से कोई परेशानी हो रही हो तो मैं तैयार हूँ। वे कुछ देर मुझे देखती रहीं, फिर बोली, इट इज़ वेरी सपोर्टिंग ऑफ यू, दरअसल मैं तुम्हें बुलाने की सोच ही रही थी, अकेली विभा पर तो इतना भरोसा नहीं किया जा सकता ना। तो आप इतना संकोच क्यों करती हैं मैम, यू आर द बॉस, आप जैसा कहेंगी जिससे कहेंगी उसे जाना ही पड़ेगा, आप नहीं जानती आपके इस सौजन्य का लोग कितना गलत अर्थ निकालते हैं। आई डोंट केयर अंजू, मैं तो सिर्फ शर्मा जी के बारे में सोच रही थी। मैं चार पांच बार उन्हें बतला चुकी थी कि वे मिस्टर कश्यप हैं, शर्मा नहीं, पर उन्हें याद ही नहीं रहता था। अब तो मैंने टोकना भी छोड़ दिया था, इसलिए उनके सुर में सुर मिलाकर कहा, आप शर्मा जी की चिंता ना करें, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी, वे भी सरकारी नौकर हैं, ड्यूटी का मतलब समझते हैं। ओके एंड गुड लक टू यू। घर लौटते समय बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अच्छा लगा कि मेरे प्रस्ताव के बाद मैडम के चेहरे पर राहत के भाव उभरे थे। पर ईमानदारी की बात यह थी कि उनसे भी ज्यादा राहत का एहसास मुझे हो रहा था। पिछले 2 हफ्ते श्रीमान जी नहीं आए थे। आखिरी बार जिस मूड में यहाँ से गए थे, लगता था इस बार भी नहीं आएंगे। 2 रविवार लगातार मैं स्नेही पड़ोसियों की प्यार भरी पूछताछ से तंग आ गई थी। इस हफ्ते फिर वही सब दोहराना बहुत संकट लग रहा था। शायद इसीलिए आगे बढ़कर मैंने ये जिम्मेदारी ले ली कि मुझे एक बहाना चाहिए था, सो मिल गया। कभी कभी लगता है मैंने नाहक शादी की। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी, ना कोई तनाव था ना पछतावा, बस एक शादी की चिंता थी जो मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों को खाए जा रही थी। अपनी भरी पूरी गृहस्थियों के बीच बेचारे एक अपराध बोध के साथ जी रहे थे। बड़े भैया की पिंकी के बीए कर लेने के बाद तो सबके सब जैसे एकदम व्यग्र हो उठे। कम से कम उसकी शादी से पहले मेरी हो जाना लाजमी था। सो श्रीमान कश्यप को घेरा गया। 10 और 12 साल के 2 बच्चों के बाप से शादी करना मेरे लिए कतई रोमांचक नहीं था, पर भाई आश्वस्त थे कि मुझे अपना एक घर मिल गया है। पर उस घर से जुड़ कहाँ पाई, किसी ने मौका ही नहीं दिया। शादी के बाद 4-5 दिन रही थी, बाद में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए गई थी, बस। छुट्टियों में वे मुझे 1-आध महीना घुमाने ले गए थे, 1 महीना मुझे भाइयों के पास रहने के लिए कह दिया था। भाइयों के पास तो हर छुट्टी में जाती थी, पर इस बार का अनुभव नया था। पीहर आई बहन बेटी का स्वागत सत्कार, लाड़ दुलार पहली बार ही पाया था। शादी के बाद भी मैं तो उसी घर में बनी रही, पर हाँ, मिस्टर कश्यप को ज़रूर एक अतिरिक्त घर मिल गया था। उनकी सारी छुट्टियाँ यहीं गुजरती। केंद्र सरकार की नौकरी थी, शनिवार रविवार छुट्टी होती। वे भोपाल से शुक्रवार को इंटरसिटी से आते और सोमवार की सुबह उसी ट्रेन से लौट जाते। साल भर से मेरा दाम्पत्य जीवन इसी साप्ताहिक तंज पर चल रहा था। उस रविवार की रात को भी वे घड़ी में अलार्म भर रहे थे कि मैंने कहा, सुबह चले जाएंगे? जाना तो पड़ेगा, कल सोमवार है, भूल गई क्या? सोमवार कैसे भूल सकती हूँ, मुझे भी कॉलेज जाना है, पर मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। क्या? कल शाम मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुला लिया था। कल क्यों, आज ही बुला लेती? यूं ही बुलाना अच्छा नहीं लगता, कोई मौका भी तो हो। तो कल क्या है? आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी है, आपको यहाँ बैठकर भी अपने बच्चों के ही नहीं, भांजे भतीजों के, मामा मौसियों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, मेरा जन्मदिन तो कब से आकर चला गया। जिन्हें याद था उन्होंने मना भी लिया। आपके लिए मुझे 100-100 बहाने गढ़ने पड़े। एक साड़ी अपनी ओर से खरीदकर आपके उपहार के तौर पर पेश करनी पड़ी। मेरा जन्मदिन आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पर कल की तारीख तो आपको याद रखनी चाहिए, या कि उसका भी आपके निकट कोई महत्व नहीं है? ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई थी। उन्होंने कैलेंडर की ओर नज़र डाली। ओह, कल 11 नवंबर है, मतलब अपनी शादी को 1 साल पूरा हो गया। धन्य भाग, आपको याद तो आया, पर आप इस तरह मुंह क्यों लटका लिया है? मैंने रुकने के लिए कहा ज़रूर है, पर कोई समस्या हो तो रहने दीजिए। सेलिब्रेशन का मूड अगर है तो मैं साथ चली चलती हूँ, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। तुम चलना चाहो तो ज़रूर चलो, उन्होंने कहा, पर स्वर में कोई आग्रह नहीं था। ऐसा है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, मंगलवार को शौनक का गणित का पेपर है, इसलिए मेरा कल जाना ज़रूरी है। सेलिब्रेशन से मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं था। हम सब मिलकर बाहर खाना खा सकते थे या 1-आध पिक्चर देख सकते थे। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साथ रह लेते। यह प्रस्ताव आपकी ओर से आता तो मैं उतनी ही खुश हो जाती, पर आपको तो याद ही नहीं था। आपको अम्मा जी के ठाकुर जी तक की याद रहती है। पिछली रामनवमी और जन्माष्टमी पर श्रृंगार का सारा सामान यहीं से ले गए थे। बस आपको मेरा जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रहती। बार बार ये बच्चों का अम्मा का ताना क्यों दे रही हो? वे लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। और मैं क्या हूँ, सिर्फ ज़रूरत? कैसी ज़रूरत, अब ये भी बताना पड़ेगा। कुछ देर तक कमरे में भीषण स्तब्धता छाई रही। फिर मैंने कहा, आप बच्चों के सामने एक आदर्श पिता बने रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे तरजीह नहीं देती, जानती हूँ। इसीलिए आज तक आपने मेरे स्थानांतरण के लिए प्रयत्न नहीं किया। आश्चर्य तो यह कि अम्मा जी ने भी कभी इसके लिए जोर नहीं दिया। प्लीज लीव माई मदर अलोन। मैं कोई उन्हें गाली थोड़ी ना दे रही हूँ, एक बात कह रही हूँ। कोई भावुक महिला होती तो कहती, बहू तुम आकर जल्दी से अपना घर बार संभालो और मुझे छुट्टी दो। पर वे बड़ी प्रैक्टिकल हैं, उन्हें यही व्यवस्था रास आ गई है। घर में उनका एक छत्र शासन भी बना रहता है और बेटे को कोई परेशानी भी नहीं होती। वह आदर्श बेटा बना रहता है, आदर्श पिता बना रहता है और साप्ताहिक आनंद यात्रा भी निर्विघ्न चलती रहती है। आनंद यात्रा? वाह, तुम क्या सोचती हो, तुम कोई हुस्न परी हो जिसके लिए मैं दीवाना होकर चला आता हूं। ठक, लगा जैसे किसी ने कलेजे पर एक घूंसा जड़ दिया हो। बड़ी मुश्किल से मैं उस पीड़ा को जज्ब कर पाई। फिर अत्यंत कसैले स्वर में कहा, मैं हुस्न परी होती तो 34 साल तक अनब्याही ना बैठी रहती और ना ही दो बच्चों के बाप से शादी करती। यह बात कहने के साथ ही मैं दीवार की ओर मुंह करके लेट गई थी, इस कारण उनका चेहरा नहीं देख पाई, पर वह जरूर स्याह पड़ गया होगा। वे उस रात कहाँ सोए मैं नहीं जानती। सुबह अलार्म बजा था पर मैं नहीं उठी। उन्होंने शायद अपने से ही चाय बनाई थी, पर मैं दम साधे पड़ी रही। जाते समय उन्होंने मुझे आवाज़ दी भी हो तो पता नहीं। सुबह उठी तो लगा जैसे एक भयानक स्वप्न देखकर जागी हूँ। उसके बाद आज तीसरा शुक्रवार है, जनाब की कोई खबर नहीं। रूठ कर गए हैं, सोचा होगा मना लेगी। पर हम मिट्टी के नहीं बने हैं, बल्कि गुस्सा तो हमें आना चाहिए, अपमान हमारा हुआ था। सच तो ये है कि उनके ना आने से मुझे राहत ही मिली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उस व्यक्ति का स्पर्श या सामीप्य सहन नहीं कर पाऊंगी। सुबह बैग भर रही थी कि फोन खड़का। मैं बोल रहा हूँ। मैं? कितना जबरदस्त अहम है, जैसे आवाज सुनते ही पहचान लिए जाएंगे। अच्छा, आप हैं, कहिए। हम लोग रात के 9 बजे तक पहुंच रहे हैं, फोन इसलिए किया है कि खाना बनाकर रख सको। पिछले 2 शुक्रवार से मेरा खाना बर्बाद हो रहा था, पर मैंने उसका जिक्र ना करते हुए कहा, हम लोग मतलब? बच्चे भी आ रहे हैं, इसलिए बस से आ रहा हूँ, ट्रेन बहुत लेट पहुँचती है। मैं पसोपेश में पड़ गई। मेरी चुप्पी से वे थोड़ा विचलित हो गए। क्या हुआ, कोई समस्या है? कहो तो बच्चों को ना लाऊं, बड़ी मुश्किल से राजी किया था। बच्चे आ रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन सचमुच एक समस्या आ गई है। मैं आज शाम को अजंता एलोरा जा रही हूँ। प्रोग्राम बदल नहीं सकती? नहीं, क्योंकि ये प्लेजर ट्रिप नहीं है, कॉलेज की लड़कियों के साथ इंचार्ज बनकर जा रही हूँ। पर तुम ही क्यों? मैं क्यों नहीं, पिछले साल भर से तो उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं लिया, मेरे सारे संडेज फ्री रखे, कॉलेज में इतनी परीक्षाएं होती हैं पर कभी इन्विजिलेशन की ड्यूटी तक नहीं दी। पर किसी की सदाशयता का ज़्यादा फ़ायदा उठाना अच्छा थोड़े ही लगता है, आखिर ये मेरी नौकरी है। इस बार उधर चुप्पी छाई रही। फिर 2 हफ्ते से आप आए नहीं थे तो मैंने सोचा इस बार भी नहीं आएंगे। मैं 2 हफ्तों से नहीं आया था तो तुमने भी कोई खोज खबर तो नहीं ली, एक बार फ़ोन ही कर लेती। कारण मुझे मालूम था, इसलिए फ़ोन नहीं किया। मैं बीमार भी तो हो सकता था। बीमार होते तो फ़ोन करते, आप तो नाराज़ थे। मैं तो आज भी आपकी आशा नहीं कर रही थी, शायद अम्मा जी ने। हर बार तुम अम्मा को बीच में क्यों ले आती हो? बहुत श्रद्धायुक्त अंतःकरण से कह रही हूँ कि शायद अम्मा जी ने ही समझाया होगा कि कमाऊ बीवी से बनाकर चलना चाहिए। उधर से फ़ोन पटकने की आवाज़ आई। मैंने भी परवाह नहीं की, अगर आप कड़वी बातें कहते हो तो सुनने का भी हौसला रखो, और जब सुन नहीं सकते तो कहते क्यों हो। कॉलेज से लौटते हुए अचानक ख्याल आया कि सफ़र के लिए ज़रूरी चीज़ें ले लूं। घर की ओर मुड़ने की बजाय मैं बाज़ार की ओर मुड़ गई। वह शायद मेरी होनी ही थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस ओर मुड़ते ही एक स्कूल बस मेरे सामने आ गई। उसे बचाने के लिए मैं सड़क के इतने किनारे चली गई कि गिर ही पड़ी। क्षण भर को आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पल भर में वहाँ भीड़ जुट गई। चार सिर हृदय लोगों ने मुझे स्कूटर के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुँचाया। मैंने तुरंत एक फ़ोन पड़ोस में किया और कॉलेज में। नीतू और उसकी मम्मी फौरन दौड़ी चली आईं और पूरे समय मेरे साथ बनी रहीं। कॉलेज में फ़ोन करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि लोग मेरे भरोसे ना रहें, पर खबर मिलते ही प्रिंसिपल मैडम भी दो तीन लोगों के साथ आ गईं और जाते समय अपनी कार वहीं छोड़ गईं। रात 10 बजे जब घर लौटी तो मेरे बाएं हाथ में प्लास्टर था, बाएं पैर की पिंडली में 6-7 टांके थे और घुटने और कंधे पर खरोंचें थीं। सौभाग्य से सिर पर कोई चोट नहीं थी, पर वह बेतरह घूम रहा था। घर आते ही पस्त होने से पहले मैंने बड़े भैया को फ़ोन लगाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे बोल उठे, अरे इतनी देर तुम कहाँ थी, मैं कब से फ़ोन लगा रहा था। उनके स्वर में उल्लास फूटा पड़ रहा था। मैंने अपनी बात कुछ देर को मुलतवी करके कहा, थोड़ा बाजार तक गई थी, पर आप क्यों ढूंढ रहे थे। अरे वो बीकानेर वाले पिंकी को देखने आए थे ना, उनके यहाँ से हाँ आ गई है। अरे वाह बधाई, लड़का 3 महीने के लिए जापान जा रहा है, इसलिए माँ के साथ एक बार मिलने आ रहा है। मेरी इच्छा थी कि कल तुम दोनों भी आ जाते तो लड़के को देख लेते। दरअसल भैया क्या है कि ना, मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ टूर पर जा रही थी तो इन्हें आने के लिए मना कर दिया था। कब जा रही हो। आज ही जाना था, पर पता नहीं कैसे स्कूटर से गिर पड़ी, पट्टी वगैरह करवा कर अभी लौटी हूँ। अरे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। चोट तो ज़्यादा नहीं है, पर आना ज़रा मुश्किल लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, टेक केयर, मैं इन लोगों से निपट लूँ फिर आता हूँ। नीतू मुझे देखती रह गई। ये क्या, आपने ठीक से बताया क्यों नहीं। अरे नीतू, वे बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं, इस समय मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जीजा जी को तो फ़ोन कर दिया होता। नहीं रे, यहाँ नहीं आना था इसीलिए उन्होंने टूर प्रोग्राम बना लिया था। घर पर अम्मा जी और बच्चे अकेले होंगे, इतनी रात को फ़ोन करूँगी तो परेशान हो जाएंगे। जीजा जी के पास मोबाइल नहीं है। यही तो सोच रही हूँ कि इस जन्मदिन पर उन्हें प्रेजेंट कर दूँगी, बहुत परेशानी होती है। अच्छा नीतू, आज की रात तुम मेरे पास रह जाओगी, कल मैं वासंती को बोल दूँगी। कैसी बात कर रही हो, आज तो मुझे रहना ही है, अपने घर पर खबर की भी होती तो सुबह से पहले कोई नहीं आता। वह रात बड़ी मुश्किल से कटी। उपचार के समय उन्होंने ज़रूर कोई निश्चेतक दवा दी होगी, उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा था और दर्द अपना अस्तित्व जताने लगा था। यूँ तो दर्द निवारक गोलियां भी दी गई थी, पर उन्हें कारागार होने में थोड़ा समय लगता ही था। घर का कोई साथ न होता तो मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती, पर पराई लड़की को परेशान कैसे करती, सो सहनशीलता का नाटक करना ही पड़ा। दर्द के घूंट पीते हुए मैं बार बार उस एक व्यक्ति को कोस रही थी, मिस्टर कश्यप, आपने साल भर में कोई और तोहफा तो नहीं दिया, पर शायद बददुआएं दिल खोल कर दी हैं, उसी को भुगत रही हूँ, नहीं तो 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, कभी एक खरोच तक नहीं आई। बामुश्किल तमाम रात के तीसरे पहर थोड़ी सी आंख लगी, पर नीतू ने 7 बजे ही चाय के लिए जगा दिया। उसका कहना भी ठीक था, बोली आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, अड़ोस पड़ोस में खबर लगते ही आने वालों का ताता शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगी। फिर उसी ने मेरे मुंह हाथ धुलवाए, बाल ठीक किए, उसी की मदद से मैंने कपड़े बदले, फिर उसने मेरे हाथ में कॉर्डलेस थमाकर मुझे सोफे पर लाकर बिठा दिया, आसपास तकिए लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं अधलेटी रह सकूं। बोली कि हर किसी को बेडरूम तक ले जाना ठीक नहीं लगता ना। उसका तर्क ठीक था, और जैसा कि उसने कहा था, 8 बजे से आने वालों का सिलसिला जो शुरू हुआ 10-10:30 तक चलता ही रहा। बेचारी नीतू नहाने धोने घर भी ना जा सकी। 11 बजे मैंने उसे ज़बरदस्ती घर भेजा, कहा कि दरवाजे में चेन लगा दो, आने वाला अपने आप खोल लेगा। नीतू को गए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं तो चकित थी कि ना दस्तक ना घंटी, ऐसे औचक कौन आ गया, पर जब आगंतुक को देखा तो देखती रह गई। कमर पर दोनों हाथ रखे दरवाजे में खड़े होकर श्रीमान जी मुझे घूर रहे थे। उस दृष्टि में रोष था, उपालंब था, उपहास था और शायद तिरस्कार भी। आई न्यू इट, मुझे मालूम था तुम्हें कहीं नहीं जाना था, सिर्फ मुझे टालने के लिए बहाना बनाया गया था, आई वॉज डेड श्योर। वे जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मैं भी एकटक उन्हें देख रही थी। मेरी आंखों में उपालम्ब की मात्रा शायद ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नज़रें फेर लीं। उनकी नज़रें हटते ही मैंने कॉर्डलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया। सॉरी नीतू डार्लिंग, तुम्हें फिर से कष्ट दे रही हूँ, पर क्या है कि तुम्हारे जीजा जी आ गए हैं, एक कप चाय बनाकर दे जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए पड़ोसियों को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। अब वे दरवाज़ा छोड़ सामने कुर्सी पर बैठ गए थे। अगर घर में चाय बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर पी सकता हूँ, वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं, सिर्फ देखने चला आया था। मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत व्यग्र नहीं थी, बस चाहती थी कि इस समय हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर बैठ जाए। मुझे पता था कि जीजा जी का नाम सुनते ही नीतू दौड़ी चली आएगी, और वही हुआ। 5 मिनट में नीतू 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। हाय जीजा जी, नीतू ने चहक कर स्वागत किया और हुलस कर पूछा, आपको कैसे पता चला? दीदी तो फ़ोन ही नहीं कर रही थी। पता करने वाले पता कर ही लेते हैं, उन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बेचारी नीतू इनका मंतव्य समझ नहीं पाई, अपनी ही रौ में बोली, मम्मी यही तो कह रही थी कि दिल से दिल को राह होती है, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझसे बोली, दीदी अब आप भी उठकर जरा सी चाय पी लो, सुबह से बोल बोल कर दिमाग चकरा गया होगा। वो मुझे सहारा देकर उठाने लगी और इनके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी अधलेटी मुद्रा को वे अनादर का प्रदर्शन समझ रहे थे, पर अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उठने की प्रक्रिया में जब मेरा शॉल कंधे से खिसक गया तो उनकी प्लास्टर पर नज़र पड़ी। ये हाथ को क्या हो गया है? गनीमत है कि सिर्फ हाथ ही टूटा है, आप खुशकिस्मत हैं जीजा जी कि ये सही सलामत बच गई, वरना क्या से क्या हो सकता था। तुम्हें मैं सही सलामत नज़र आ रही हूँ? अरे हाथ ही तो टूटा है, सब लोग कह रहे थे कि किस्मत वाली थी जो सड़क के किनारे गिरी, अगर बीच में गिरती तो सोचो क्या होता। उस कल्पना मात्र से ही मुझे झुरझुरी हो आई। मैंने नीतू से कहा, थोड़ी हेल्प कर दोगी प्लीज़, भीतर जाकर थोड़ा लेट जाऊँ। हाँ आप बिल्कुल आराम करो, कोई आएगा तो जीजा जी निपट लेंगे। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा, बसंती को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, अगर किसी के हाथ खबर भिजवा दोगी तो वो आ जाएगी, 2 रोटी ही डाल जाएगी। बसंती को मैं खबर कर दूंगी, पर आप रोटी की चिंता क्यों कर रही हैं? हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते? तुम ही लोग तो कर रहे हो, तो पड़ोसी होते किस लिए हैं? नीतू जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले, इतना सब हो गया तो क्या मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी? मैंने एक क्षण उनकी ओर देखा और कहा, फ़ोन कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते? इसे भी एक बहाना समझते? अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की लिखी कहानी बहुरी अकेला का पहला भाग। आगे अंजू और उसके हस्बैंड मिस्टर कश्यप के बीच में चीज़ें कैसे बदलती हैं, सुनिए इस कहानी के अगले भाग में। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत करा पूजा श्रीवास्तव ने।